मेरे जिगरी दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए सुपरवाइज करने वाली कल की बात को ही आज आगे बढ़ाते हैं। और आपको ध्यान होगा कि कल मैंने आपसे दो तरह के सुपरवाइज की बात की थी। एक माउंट आबू रोड में जो मैंने देखा था, जहां सुपरवाइज करने वाली कोई अथॉरिटी दिखाई नहीं दे रही थी, और इनफैक्ट सच बात यह कि कोई थी भी नहीं। लोग अपना अपना काम कर रहे थे, बिल्कुल यंत्रवत काम कर रहे थे। सारी चीजें बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि ऊपर वाला सुपरवाइज कर रहा हो या कोई थर्ड आई है जो इनको देख रही है, और इन सबको ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम देखे जा रहे हैं। भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन हमें देख रहा है, लेकिन कोई ना कोई तो हमें देख रहा है। और यदि हमने अपने काम में जरा भी लापरवाही की, जरा भी ढिलाई बरती, तो तुरंत उस तीसरी आंख को दिख जाएगा और हमारे तक मैसेज पहुंच जाएगा कि तुम अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हो। ये माउंट आबू रोड में मुझे महसूस हुआ। और फिर जो डीबी मॉल और दूसरे जो बाबा इंटरनेशनल होटल के बारे में मैंने बताया, तो वहां तो सुपरवाइज करने वाले बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर भी अगर आप वहां ठहर जाएं तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति आएगा जो वहां पहले से काम कर रहे हैं, उनको बुलाएगा, उनको पूछेगा, वहां की स्थितियों का मुआयना लेगा और फिर चला जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि माउंट आबू रोड में ऐसा हो कैसे रहा था, बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं होता है या क्यों नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आपको यहां यह बात थोड़ी सी रहस्यमय लगे, लेकिन इसमें रहस्य कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और जब पहली बार वे कुंभ मेला गए तो कुंभ मेले को देखने के बाद उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जन समूह, इतना बड़ा समूह, इतने लाखों लोगों की भीड़ है, और प्रधानमंत्री देखते हैं कि ये जो भीड़ है अपने आप में इतनी अनुशासित तरीके से मूव कर रही है, रह रही है, कि उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। थोड़े से पुलिस वाले हैं बस, बाकी वो जो भीड़ है स्व अनुशासित है, स्व शासित है, वो खुद सेल्फ डिसिप्लिन में रह रही है। उस समय उन्होंने बात कही थी कि भारत के लोगों में जो ये अंतर्निहित अनुशासन की भावना है, मतलब वो खुद ही अनुशासित हो रहे होते हैं, इसका बहुत अच्छा उपयोग देश के विकास के लिए किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं कर पाए। अब यहां हम कुंभ मेले को देख रहे हैं, और इससे पहले मैंने माउंट आबू रोड की बात की थी। क्या इन दोनों में आपको कुछ समानता दिखाई दे रही है? उज्जैन में जब कुंभ मेला लगा था, शायद ये 2004 की बात है, तो मैं 4-5 दिन वहां जाकर के रहा था। मैंने भी वहां स्थितियां देखी थी। खैर, वहां अनुशासन की वह स्थिति तो नहीं थी जिसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय कहा था। खैर, दोनों के बीच में बहुत लंबा फासला भी है वक्त का, लेकिन दोस्तों मैंने वहां अनुभव किया था कि छोटी छोटी घटनाएं होती हैं या छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, उनमें भी अनुशासन को बनाए रखने के लिए किसी बाहरी फोर्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहां हालांकि बाहरी फोर्स थी, ऐसा नहीं है कि फोर्स थी नहीं, लेकिन फिर भी लोग काफी कुछ अपने आप में अनुशासित से दिखाई दे रहे थे। तो इनमें समानता क्या है? कुंभ मेला और माउंट आबू रोड की जो मैं ब्रह्मा कुमारी के आश्रम के ऑफिस की जो बात कर रहा हूं, दोनों में समानता क्या है? जिस थर्ड आई के बारे में मैंने बात की या तीसरी आंख की बात मैंने कही, वो तीसरी आंख कौन सी है? क्या वो सच में है? दोस्तों, ये दोनों स्थान जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, आप सोचेंगे तो पाएंगे कि ये धर्म से जुड़े हुए हैं। कुंभ मेला धर्म से जुड़ा हुआ है। ब्रह्म कुमारी का जो मुख्यालय है वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं क्या सीधे तौर पर धर्म से ही जुड़ा हुआ है। वो अपने ढंग से धर्म की व्याख्या करते हैं और अपने ढंग से बातें बताते हैं, लेकिन है वह धर्म से ही जुड़ा हुआ। ये दोनों धर्म से जुड़े हुए हैं, और धर्म का संबंध भारतीय दर्शन और आस्था के अनुसार ईश्वर से है। तो ये जो तीसरी आंख है वो ईश्वर की आंख है। मतलब यहां हम ये नहीं कह सकते कि यहां कोई भी सुपरवाइज नहीं कर रहा है और इसके बावजूद व्यवस्था बनी हुई है। यहां भी सुपरवाइज करने वाला है, लेकिन जो सुपरवाइज करने वाला है उसे हम ईश्वर कह दें, उसे हम ब्रह्म कह दें, हम कुछ भी कह दें, या हम अपनी चेतना कह दें, हम अपनी आत्मा कह दें, क्योंकि वहां जितने लोग काम कर रहे थे ब्रह्म कुमारीज में, तो स्वाभाविक है कि वो उस पंथ के समर्थक हैं, वहां आकर के वो काम कर रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं। और याद रखिए, जो मुझे लगता है कि अगर हमारे कर्म में आनंद का भाव शामिल हो जाए, यदि हमारे कर्म में यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें सेवा का भाव शामिल हो जाए, तो वही भक्ति बन जाती है। तो वहां लोग झाड़ू नहीं लगा रहे थे, वहां लोग भोजन नहीं बना रहे थे, बना तो भोजन ही रहे थे, लगा तो झाड़ू ही रहे थे, लेकिन इसके माध्यम से वे ईश्वर की भक्ति कर रहे थे, क्योंकि उस अपने काम को उन्होंने सेवा से जोड़ दिया था। और जो कुंभ मेले में जो लोग आए हुए हैं वो किस लिए आए हुए हैं? वो ईश्वर की, आप यूं कह लीजिए कि कृपा प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं, अपने अतीत के किए गए पापों को धोने के लिए आए हुए हैं। ये पाप कौन धोएगा? वहां जो जलधारा बह रही है वो धोएगी, और वो जो जलधारा है वो विशेष जलधारा है, उस पर्टिकुलर टाइम में उस जलधारा को ईश्वर का वरदान प्राप्त है। और ईश्वर कब प्रसन्न होंगे? जब वो स्नान करेंगे। तो यहां भी ईश्वर है, साफ तौर पर ईश्वर है, हम उसे नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वह हमें देख रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है। और जो इस बात पर विश्वास करते हैं, कर रहे हैं, वो ये मानकर चल रहे हैं कि आप दूसरों की आंखों से तो बच सकते हैं, दूसरों को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन उसको धोखा नहीं दे सकते। उसकी जो तीसरी आंख है वो बहुत प्रबल है और बहुत विराट है और बहुत ही शक्तिशाली है, उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। तो जब धोखा नहीं दिया जा सकता तो सीधी सी बात है कि एक ही उपाय रह जाता है कि भैया या तो करो या मत करो। तो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, हम करते हैं। और अब उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब है कि उनकी चेतना में सुपरवाइज मौजूद है, सुपरवाइजर मौजूद है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमारा निरीक्षण कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि क्या सच में हम सब इसी चेतना से ही संचालित हैं? हमारे व्यवहार में, हमारी सोच में यह बात आ गई है कि कोई हमारा निरीक्षण करता रहे? इस पर आप सब विचार करेंगे, आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों अब अनुमति चाहता हूं, नमस्कार।